ये किंचो से नए पाठ की शुरुआत हो रही है। इसमें बताया गया कि भावनायाः तिङ्गर्थत्वे, भावना अर्थात व्यापार, वह अगर तिंग का अर्थ होगा तो भावयति घटम इतिवत्। जैसे भावयति घटम में भावयति का अर्थ होता है उत्पादयति, तो भावयति घटम अर्थात घट को उत्पन्न करता है, घट को बनवाता है, तो ये अर्थ है। तो इसमें जैसे घटम में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति आई है भावयति घटम में, उसी तरह से भवति घटम इत्यपि स्यात्, भवति घटम ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा। बात ये है कि भवति में एक तो भू धातु है और दूसरा ती प्रत्यय है, तो मीमांसक के अनुसार भू धातु का अर्थ हुआ फल, फल यहाँ पर कौन है, सत्ता, और ती का अर्थ है व्यापार। तो यहाँ पर सत्ता जो है, सत्ता रूप फल का आश्रय हो जाने, घट हो जाता है, तो सत्ता रूप फलाश्रय होने के कारण घट में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे भावयति घटम में कर्म संज्ञा होती है घट की, उसी तरह से भवति घटम में भी जो है कर्म संज्ञा होने लगेगी। यही कहा, आगे वही इसी बात को कहते हैं कि धात्वर्थ फल आश्रयत्व रूप कर्मत्व सत्वात्। भवति घटम में जो घट शब्द है उसमें धात्वर्थ फल जो है सत्ता, उसका आश्रयत्व रहता है, इसीलिए उसमें कर्मत्व रहने के कारण फिर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो जैसे भावयति घटम बनता है उसी तरह से भवति घटम भी प्रयोग होने लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, होता तो है घटः भवति अथवा भवति घटः। इस पर मीमांसक जो है अपनी ओर से तर्क देते हैं कि ऐसा है कि भवति घटम प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि घट जो है जैसे भू धातु का जो फल है सत्ता रूप फल, उसका आश्रय घट है, उसी तरह से ती का अर्थ जो व्यापार है उस व्यापार का भी आश्रय घट है, तो घट दोनों का आश्रय हुआ, फल का भी आश्रय हुआ और ती के अर्थ व्यापार का भी आश्रय हुआ। तो फलाश्रय होने के कारण कर्म संज्ञा की प्राप्ति होगी और व्यापाराश्रय होने के कारण कर्तृ संज्ञा की प्राप्ति होगी। जब दोनों की प्राप्ति होगी तो उसमें ये देखा जाता है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, जो पर होगा वही कार्य किया जाएगा, तो कर्तृ संज्ञा जो है वह पर कार्य है, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रथमा ही होगी, भवति घट ही होगा, घट कर्ता ही होगा, घट कर्म नहीं होगा, ऐसा मीमांसक लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसी बात को कहा कि नौच आख्यातार्थ व्यापार आश्रयत्वेन कर्तृत्वात्, कि आख्यात माने तिंग का जो अर्थ व्यापार है उस व्यापार का आश्रय भी है घट, तो कर्तृत्वात् उसमें कर्तृत्व आएगा माने कर्तृ संज्ञा होगी, और उस संज्ञा से कर्म संज्ञा या बाधात, कर्म संज्ञा का बाध हो जाएगा, तो नौ द्वितीया इति वाच्य, इति नौ वाच्यम, तो द्वितीया होगी, इस तरह से नौ वाच्य माने इस तरह से नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, तो आगे इसमें दोष देते हैं। बात आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अभी इन्होंने मीमांसकों ने क्या कहा कि आख्यातार्थ व्यापार का जो आश्रय होगा वह कर्ता होगा, ऐसा इन्होंने कह करके समाधान प्रस्तुत किया ना, तो इसी में दोष दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आख्यातार्थ व्यापार आश्रयस्य कर्तृत्व, कि आख्यातार्थ व्यापार का जो आश्रय होगा वह कर्ता होगा, ऐसा मान लेने पर क्या दिक्कत आएगी, तो पाचयति देवदत्तो विष्णु मित्रेण इत्यत्र विष्णु मित्रस्य अकर्तृतापत्तो तृतीया अनापत्ते है। अब पाचयति देवदत्तो विष्णु मित्रेण जो है वाक्य, इसका अर्थ होता है कि देवदत्त विष्णु मित्र से पकवाता है, तो देवदत्त स्वयं नहीं पाक करता है बल्कि वह विष्णु मित्र से पाक करवाता है। अब यहाँ पर जो है पाचयति में जो ती है उसका अर्थ हो गया व्यापार, उस व्यापार का आश्रय जो है वह कौन होगा, तो देवदत्त होगा, विष्णु मित्र नहीं होगा, और विष्णु मित्र नहीं होगा तो विष्णु मित्र कर्ता भी नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा तो कर्तिकरण योज तृतीया से जो कर्ता में तृतीया होती है वह तृतीया नहीं हो पाएगी। फिर से एक बार पंक्ति को देख लेते हैं कि आख्यात अर्थ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्व, कि आख्यात का अर्थ जो व्यापार है उसका आश्रय अगर कर्ता होगा तो पाचयति देवदत्तो विश्वमित्रेण इत्यत्र, यहाँ पर विश्वमित्रस्य अकर्तृतापत्तो, विश्वमित्र में अकर्तृता की आपत्ति होगी, माने विश्वमित्र जो है कर्ता नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वह ती का अर्थ जो व्यापार है उसका आश्रय यहाँ विश्वमित्र नहीं है, उसका आश्रय तो देवदत्त है। तो फिर तृतीया अनापत्ते है, कर्तिकर्ण व तृतीया से विश्वमित्रेण में तृतीया की अनापत्ति होगी, माने तृतीया विभक्ति नहीं होगी। और भी दोष देते हैं कि ग्रामम गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम, इसका अर्थ हुआ कि देवदत्त विष्णुमित्र को ग्राम भेजता है। तो देवदत्त विष्णुमित्र को ग्राम भेजता है, इसका संस्कृत में बनेगा ग्रामम गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम। इसमें भी गमयति में जो ती का अर्थ व्यापार है उसका आश्रय देवदत्त है, वह तो कर्ता होगा, विष्णुमित्र जो है वह कर्ता नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृता आपत्तो, विष्णुमित्र में अकर्तृता की आपत्ति आएगी, अर्थात विष्णुमित्र कर्ता नहीं बन पाएगा। और जब विष्णुमित्र कर्ता नहीं बनेगा तो फिर ग्रामम की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ताकि कमाल है, विष्णुमित्र अगर कर्ता नहीं बनता है उसमें उससे ग्रामम में क्यों फर्क पड़ेगा? तो वो इसलिए पड़ेगा कि कर्म संज्ञा करने का सूत्र कौन है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, उसमें है कर्तु क्रियया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संयम से, कर्ता का जो है जो क्रिया के द्वारा इष्टतम होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो जब विष्णुमित्रम में कर्तृ संज्ञा नहीं होगी तो यह कर्ता नहीं कहलाएगा, और इसका विष्णुमित्र का इष्टतम ग्राम नहीं होगा। तो जब कर्ता का इष्टतम ग्राम होगा तभी उसकी कर्म संज्ञा होगी, और ये विष्णुमित्र जो बेचारा है वह तो कर्ता बन ही नहीं पा रहा है। तो उसका इष्टतम ग्राम के न होने से उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। वही कहता है कि इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृता आपत्तो, विष्णुमित्र में अकर्तृता की आपत्ति आएगी। कर्तृता माने कर्तृत्व और अकर्तृता माने अकर्तृत्व, तो अकर्तृत्व की आपत्ति आने से ग्रामस्य गमी कर्मत्व अनापत्ते, ग्राम जो है शब्द उसमें गमी धातु का जो कर्म बनना होता है वह बन नहीं पाएगा, गमी में गमी कर्मत्व की अनापत्ति होगी। किसमें? ग्राम शब्द में। एक और दोष देते हैं, तथा च ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम, इसका ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम, इसमें जो है ग्रामाय में चतुर्थी होती है और चतुर्थी करने का सूत्र है, आगे लिखते हैं, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। इस सूत्र से ग्रामाय में यहाँ पर चतुर्थी हुई है, तो ये भी चतुर्थी ग्रामाय में नहीं हो पाएगी क्योंकि विष्णुमित्र जो है वह कर्ता बन नहीं पाएगा, और कर्ता नहीं बनेगा तो गत्यर्थ कर्मणि जो कहता है हाँ, कि गत्यर्थक धातु का जो कर्म हो उसमें चतुर्थी होती है, तो कर्ता अगर विष्णुमित्र नहीं बनेगा तो ग्राम कर्म भी नहीं बनेगा, जैसे पहले नहीं बना था तो कर्म नहीं बनेगा, तो फिर उसमें गत्यर्थ कर्मणि के अभाव में चतुर्थी नहीं हो पाएगी। वही कहा, इति गत्यर्थ कर्मण्येव चतुर्थी विधानात्, गत्यर्थक धातु के कर्म में ही चतुर्थी का विधान होता है, और ग्राम अगर गत्यर्थक धातु का कर्म नहीं होगा तो इसमें चतुर्थी नहीं हो पाएगी। अब ये तीन दोष देने के बाद आगे कहते हैं, एते न निजन्ते आख्यातार्थः उभयम्, ताकि इन तीनों दोषों को देखते हुए क्या मानना चाहिए आपको, कि दो व्यापार मानना चाहिए निजंत स्थल में। ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी दोष दिए गए सब निजंत प्रयोग हैं, निजंत माने निच प्रत्ययांत प्रयोग है, निच प्रत्यय प्रेरणा अर्थ में होता है, जैसे पचति है तो निजंत में बनेगा पाचयति, गच्छति है तो निजंत में बनेगा गमयति, तो इस तरह से ये पाचयति है गमयति है, इस तरह से जहाँ निजंत प्रयोग होता है वहाँ पर दो व्यापार मानना चाहिए, एक तो जो निजंत धातु है उसका अर्थ व्यापार होता है और दूसरा आख्यात का अर्थ जो है वह व्यापार होता है, और दोनों व्यापार का जो आश्रय होगा वो दोनों कर्ता होंगे, तो दो दो कर्ता हो जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ कर्म संज्ञा होनी है कर्तुरीप्सित तमम कर्म से या चतुर्थी होनी है गत्यर्थ कर्मणि सूत्र से, तो वो उसकी उपपत्ति हो जाएगी, उपपत्ति माने उसकी सिद्धि हो जाएगी। और तदाश्रयत्वात् माने वो जो दोनों व्यापार हैं निजंत धातु का अर्थ व्यापार और आख्यात का अर्थ व्यापार, उसका आश्रयत्वात् उसका आश्रय होने के कारण, आप जानते हैं ना कि व्यापार आश्रय कर्ता कहलाता है, तो उसका आश्रय होने के कारण क्या होगा कि देवदत्त यज्ञ दत्तयो हो कर्त्रिता इति अपास्तम, और उसका आश्रय होने के कारण देवदत्त में भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, यज्ञ दत्त में भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से मीमांसकों ने जो कहा था उसका कहा कि इति अपास्तम, यह जो मीमांसकों का कहना है यह अपास्त है, अपास्त है मतलब निरस्त है, निरस्त है मतलब ये बात अनुचित है, ये बात जो है ना मानने के योग्य नहीं है या स्वीकरणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई तरह के दोष दिखा दिए, केवल कर्तृ संज्ञा की बात नहीं है, चतुर्थी विधान की बात है, कर्म संज्ञा की विधान की बात है, तो इन दोषों के कारण ये जो आप कहते हैं कि दो व्यापार मान करके और दोनों की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, ये बात सही नहीं है, इस तरह से खंडन किया। फिर आगे किंच से जो है इनकी बात का खंडन कर रहे हैं कि तस्मिन प्रयोगे यह आख्यातार्थ इत्यस्य आवश्यकत्वेन। अब क्या होगा कि अगर आप इस तरह का प्रयोग करेंगे, माने दो दो व्यापार आश्रय मान करके दोनों की कर्म संज्ञा करके अर्थ करेंगे, और मुख्य बिंदु क्या है कि आप जो है आख्यात का अर्थ व्यापार मानते हैं और आख्यात प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ व्यापार मानते हैं ना, तो आपके अनुसार क्या होगा, तो शाब्द बोध में प्रत्यार्थ प्रधान होने लगेगा, प्रत्यार्थ जो है व्यापार प्रत्यार्थ ही प्रधान होने लगेगा। तो तस्मिन प्रयोगे यह आख्यातार्थ इत्यस्य आवश्यकत्वेन आख्यात शून्य देवदत्त पक्ता इत्यादो देवदत्तस्य अकर्तिता पत्ते है इति दिक। तात्पर्य यहाँ पर कहने का ये है कि आपने आख्यातार्थ व्यापार माना तो ठीक है, जहाँ पर आख्यात का प्रयोग होगा, तीन का प्रयोग होगा, वहाँ तो व्यापार अर्थ रहेगा, व्यापार आश्रय को कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, कर्ता बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर आख्यात का प्रयोग नहीं है, जैसे कृदंत स्थल में तीन का प्रयोग नहीं होता, आगे एक वाक्य दिया है इन्होंने देवदत्त पक्ता, तो पक्ता माने पाक करने वाला देवदत्त, तो यहाँ पर जो है देवदत्त पक्ता में देवदत्त कर्ता है, ये कर्ता कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आख्यातार्थ व्यापार तो है ही नहीं, आख्यात ही नहीं है, तो आख्यातार्थ व्यापार कैसे होगा, और आख्यातार्थ व्यापार आश्रय को ही आप कर्ता मानते हो, तो फिर देवदत्त पक्ता में जो देवदत्त है उसकी अकर्तृता आपत्ति आएगी, वह कर्ता नहीं बन पाएगा। इस तरह से आख्यातार्थ व्यापार आश्रय कर्ता होता है, ये जो मीमांसकों ने कहा था उसका इन्होंने खंडन किया। अब ये जो आठवीं कारिका थी उसमें जो दूसरी लाइन थी, उस दूसरी लाइन में ये कहा गया था कि क्रियावाचक किंच क्रियावाचकताम बिना धातुत्वमेव न, कि आप अगर धातु को क्रिया का वाचक नहीं मानेंगे, क्रिया अर्थ का बोधक नहीं मानेंगे, तो धातु संज्ञा ही नहीं होगी भू आदि धातु से, और धातु संज्ञा नहीं होगी तो फिर अनर्थ हो जाएगा, भू धातु ही नहीं कहलाएगी, तो फिर उसमें लट तिप ये सब नहीं आएगा, जो भी कार्य होते हैं धातु प्रयुक्त वो सारे कार्य नहीं हो पाएंगे, तो उसी बात का विवरण यहाँ पर देते हैं। कहते हैं कि सूत्र अनुपपत्तिम अपि मानत्वेन प्रदर्शयन, कि भट्टोजी दीक्षित जो है कारिका में सूत्र की अनुपपत्ति भी बता रहे हैं प्रमाण के तौर पर, किस चीज के प्रमाण के तौर पर, कि धातु का अर्थ जो है व्यापार भी होता है, इसके प्रमाण के तौर पर भूआदिओ धातव सूत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सूत्र अनुपपत्ति मपि माने सूत्र के द्वारा अनुपपत्ति भी दिखा रहे हैं, अनुपपत्ति माने असिद्धि, असिद्धि को मानत्वेन माने प्रमाणत्वेन प्रमाण के रूप में प्रदर्शयन प्रदर्शित करते हुए उक्त अर्थस्य स्वोत प्रेक्षितत्वम निरस्यति, उक्त अर्थ जो है, उक्त अर्थ मतलब धात का अर्थ व्यापार होता है, ये जो बात है यह बात स्व उत्प्रेक्षित नहीं है। स्व उत्प्रेक्षित माने कपोल कल्पित, उत्प्रेक्षित माने कपोल कल्पित, तो स्व से कपोल कल्पित ये बात नहीं है, बल्कि यह प्रामाणिक बात है कि धातु जो है वह क्रिया का वाचक होता है। यह बात किंच के द्वारा कारिका में दीक्षित जी ने बताई है। आगे कहते हैं कि धातु संज्ञा विधायकम भू आदि धातव इति सूत्रम, ये तो क्लियर है कि भू आदि धातव धातु संज्ञा का विधान करता है। इस भू आदि धातव में विग्रह करके बताते हैं कि भूश्च बाश्च इति द्वंद्वः, भूश्च बाश्च इस विग्रह में द्वंद्व समास होता है और आदि शब्द जो है उसमें एक शेष होता है, जैसे रामश्च रामश्च में एक शेष होने का होकर के रामो बनता है, ऐसे ही यहाँ आदिश्च आदिश्च करके आदि बनेगा। वही कहते हैं कि आदि शब्द यो हो, माने दो आदि शब्द हैं, एक का अर्थ है व्यवस्था और दूसरे का अर्थ है प्रकार। वही कहा कि व्यवस्था प्रकार बाची नो हो, बाची माने बोधक, तो व्यवस्था बोधक जो आदि शब्द है और प्रकार बोधक जो आदि शब्द है उसमें एक शेष होता है। अब यहाँ व्यवस्था माने क्या अर्थ होता है, व्यवस्था माने होता है अवयव और प्रकार माने होता है सदृश, ठीक है, तो एक अवयव वाची आदि शब्द है और एक सदृश वाची आदि शब्द है और दोनों में एक शेष हुआ है। फिर आगे विग्रह बताते हैं कि आदिश्च आदिश्च आदि, ये एक शेष का विग्रह है। तो ऐसा है कि भूश्च बाश्च में द्वंद्व समास किया तो भू बहु बन गया और आदिश्च आदिश्च में एक शेष किया तो आदि बन गया। अब जब अलग अलग बना लिया, भू बहु बना लिया, आदि बना लिया, फिर इसमें बहुव्रीहि समास किया जाएगा। वही कहते हैं कि ततो भूवो आदि ये शाम ते भूवादय इति बहुव्रीहि, इस तरह से भूवो आदि ये शाम इस विग्रह में बहुव्रीहि समास होता है। फिर इसका अर्थ क्या निकलता है भूवादय का, तो आगे लिखते हैं तथा च भू प्रभृतियो बा सदृशा धातव इत्यर्थ, माने भू प्रभृति और बा के सदृश जो है उसकी धातु संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ निकलता है भूवादियों धातव का। इसमें जो भू प्रभृति है, भू प्रभृति मैंने बताया था ना, एक आदि का अर्थ है अवयव, माने भू है अवयव जिस गण के, ऐसे गणपथित जो धातुएं हैं उन धातुओं को कहेंगे भू प्रभृति धातु, माने भूआदि अदादि दिवादि, इस तरह से जो धातु के गण है ना उन गणों में जिनका पाठ है जिन धातुओं का उसको कहेंगे भू प्रभृति। और बा सदृश और बा के समान, तो बा में कौन सी समानता है, तो बा में क्रियावाचकता है और वह क्रियावाचकता जिस जिस में हो वह सब बा के सदृश होगा। तो इस तरह से भू प्रभृतियों का मतलब हो गया भूआदि गण में जो पथित है और बा सदृश मतलब हो गया कि बा धातु की तरह जो क्रिया का वाचक है वो धातव वह धातु कहलाती है। आगे लिखते हैं तच्च क्रियावाचकत्व न, ये बात मैंने पहले बताई है कि समानता कौन सी है, तो क्रियावाचकत्व की समानता है, तो बा की तरह जो भी क्रियावाचक है वह धातु कहलाएगी। इस तरह से भूआदि धातव का क्या अर्थ निकला, तथा च क्रियावाचकत्व सती भूआदि गण पथितत्व धातुत्व, जो क्रिया का वाचक हो और भूआदि गण में जिस जो पथित हो उसको उसमें धातुत्व रहता है अर्थात उसकी धातु संज्ञा होती है। इति परजव सन्नम माने इति फलितम, इस तरह से अर्थ फलित हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ वो हम आगे के पाठ में जो है इस तरह से व्याख्या करने का, इस तरह से अर्थ निकलने का क्या फल मिलता है वो आगे के पाठ में बताया जाएगा।